आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाती मा कसबतुम, ऐ ईमान वालों अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह तआला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तआला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह तआला वुसअत वाला है और इल्म वाला है। यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतल हिकमत फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अकलमंद ही हासिल किया करते हैं। ये थी आयत नंबर 267 से 269। इसका उन्वान है, अल्लाह से शराकत कर लो सिर्फ नफ़े की बुनियाद पर। दुनिया में अमूमन जो हमें डील्स मिलती हैं वो क्या है, नफ़े और नुकसान की शराकत पे। आप पैसा लगा लें नफे और नुकसान की बुनियाद पे, और अगर कोई सिर्फ नफे की बुनियाद पे हमें कोई डील देता है तो वो तो वैसी जायज नहीं रहती, जिसको इंटरेस्ट कह देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें एक ऐसी दावत देता है, और वो क्या है कि जिसने मेरे साथ सौदेबाजी की, जिसने मेरे रास्ते में जान माल और अपनी स्किल्स और अपनी तवानाइयों और अपनी जवानियों को लगा दिया, उसको कभी नुकसान नहीं होगा। और ऐसी चीज को कि माल कहाँ खर्च करे, इसको यहाँ हिकमत कहा गया। हिकमत बहुत खूबसूरत चीज है। अल्लाह ताला कहते हैं खैर कसीर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की मीरास है, जहां से मिलती है ले लो, मिताए गुमगुश्ता। मुराद क्या है कि हिकमत है असल में जिंदगी गुजारने का तरीका। हिकमत क्या है? तकवा के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अपने मामलात को इस तरह से इस्तेमाल करना कि अपने रिसोर्सेज जाया ना हो, यानी जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये है हिकमत। जिंदगी इस तरीके से गुजारी जाए कि इंसान लोगों को बेहतरीन तरीके से हैंडल करना सीखे। आप घर में, आपको अपने बच्चों से डील करना आ जाए, आपको अपने शोहरों से डील करना आ जाए, आप अगर कहीं पढ़ाती हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करना आ जाए, आप कहीं मैनेजर हैं तो आपको अपना स्टाफ जो है उसको डील करना आ जाए, ये सारी चीजें हिकमत होती हैं। यानी सही बात को सही वक्त पर करना, सही फैसला अमल करने का सलीका है, अल्लाह की रजा के लिए किसी काम को करना, ये सारी चीजें जो है ये इंसान के हिकमत के लिए है। दूरअंदेशी को हिकमत आप कह लें। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको हिकमत दे दी उसको बहुत कुछ दिया। यहाँ मालो दौलत के खर्च करने के रास्ते में हिकमत की बात क्या है? वही बात जिसका पीछे तस्करा हुआ कि जमीन देख के बीज डालो, वहां डालो जहां तुम्हारा फायदा हो। क्यों सहाबा कराम अपना माल ले लेके फिरते थे अल्लाह के नबी के पास? अल्लाह के नबी खुदा के लिए इसको कबूल कर ले, कुछ काम आ जाए। अबू बकर सिद्दीक को देखें, उस्मान गनी को देखिए, हजरत अलहा को देखें, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ को देखें, घर की माल उठा के फिर रहे हैं क्योंकि उनको पता था ये हमारा लग जाएगा। दुनिया में आप देखिए कि कोई कंपनी बहुत फ्लरिश करे, बहुत बिजनेस है उनका, बड़े बड़े उनके शेयर्स बिकते हैं या उनकी प्रॉफिट की इतनी लंबी लिस्ट है, तो लोग उनके साथ माल लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है ये मिलेगा। और अगर कोई डूबती हुई कंपनी हो तो कोई उसमें माल लगाया होगा तो वो भी उठा लेगा। ऐसी है ना, जहाँ ज्यादा माल मिलने का उम्मीद होती है वहीं लोग लगाते हैं ना। अब सारी जगह जहाँ इंसान लगाता है उसमें से सबसे ज्यादा माल कहाँ मिलेगा वापस? अल्लाह के रास्ते में मिलेगा। आज हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, कल हमें वहां जाके मिल जाता है। तो यही हिकमत इंसान की मांगने की जरूरत है। हम जो माल कमाते हैं ना, आप देखिए जो माल भी हम कमाते हैं ना, उसके खर्च की दो सूरतें होती हैं। एक होती है शैतान के बताए हुए रास्ते पे खर्च किया जाए, और एक होती है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे खर्च करना। जो शैतान के रास्ते पे खर्च करता है उसकी निशानी क्या है कि वो अपनी जाती जरूरतों को बड़ा कर लेता है। उसकी जात ही अपनी, मेरी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती, एक अभी खर्चा नहीं निकाला, नहीं अभी दूसरी शुरू हो गई। शैतान हर वक्त चटपटी बढ़ाता है कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए कमाते हो, अब तुम्हारे बच्चे हैं, अब बच्चियों की शादी है, अब ये है वो है, और उसकी छोटी छोटी जरूरतें इतनी बड़ी करके दिखाता है कि फिर बंदा बस उसी में लग जाता है। इसके बरक्स फिर होता क्या है कि माल बढ़ जाता है। जाहिर अल्लाह के रास्ते में नहीं लगेगा तो बढ़ेगा, जब बढ़ने लगता है तो फिर एक और पट्टी बढ़ाता है, कहता है देखो अब इतना कमाते हो, आखिर लोगों को भी तो पता चले तुम इतने खाते पीते हो, चलो अब नमूदो नुमाइश पे लगाता है। फिर वो इंसान की घर पे नहीं इतना लगता जितना बाहर पत्थरों पे लगने लगता है। फिर सबसे ज्यादा वहां माल लगता है जहां शैतान रहते हैं, घरों के बाथरूम सजने लगते हैं, फिर बेडरूम से बड़े बड़े बाथरूम बनने लगते हैं। अब इतना बड़ा घर बनाया, फिर उसकी जरूरत पड़ी होगी, फिर उसके मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, फिर उसके ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रहेंगे, और इस तरह होता क्या कि हर लम्हे अपनी दौलत में ही बढ़ाता रहता है। पिछले दिनों दुनिया का एक शख्स जिसका इंतकाल हुआ, मारूफ भी सबसे ज्यादा था, दौलत भी सबसे ज्यादा थी, लेकिन जब मरा तो उसके सर पे शायद $25 लाख का कर्जा था। क्यों, कहाँ गया कर्जा? अपनी जात पे लग गया। प्लास्टिक सर्जरी करा लो तो इतने पैसे लग जाएंगे, घर बना लो तो इतना कर लो, गाड़ी बना लो तो इतनी। आज आप देख लीजिए कि जितने लोगों के पास घर बड़े हैं उतने जेबें खाली हैं। आप उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को देख के कहते हैं वाह माशाल्लाह, बहुत ही लगता है कि पीछे से शुरू से इनके हाथ में, और बाज़ दफ़ा उनकी जेब में $10 का नोट नहीं होता। वजह के आंसुओं से रोते हैं लोग। क्या करें जब से ये चीजें ले ली हैं, बच्चों को आइसक्रीम भी नहीं खिलाते, कि नहीं हमने घरों की पेमेंट करनी है। तो ये कौन सी अकलमंदी है? जब इंसान अपनी जात पे इतना खर्च करता है ना, तो इसी को अल्लाह ताला ने कहा क्या शैतान युजैदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फक्शा, वो फुखश और मुनकर की बात करता है, जबकि अल्लाह वल्लाहु युजैदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फ़द्ला। इस हिस्से को हाईलाइट कर लें, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ये वादा देता हूँ कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी खताओं को, तुम्हारी लग्जिशों को माफ़ कर दूंगा और अपना फजल भी दूंगा, और फजल दुनिया का माल होता है, यानी तुम मेरे रास्ते में दोगे मैं तुम्हें और दे दूंगा। अल्लाह रखता नहीं है। देखिए कोई आप अपने से किसी अमीर शख्स को कुछ दें तोहफे में या पैसे दें किसी सूरत में, कभी ऐसा होता है ना खानदानों में, कोई गरीब घर के लोग होते हैं वो शादियों पे कहते नहीं हमने भी तोहफे देने हैं, सब दे रहे हैं, वो जबरदस्ती उनको देते हैं, तो वो क्या करता है, चलाओ दे दो, और फिर उसी में कुछ और डाल के ना 5-10, तो फिर आपको जाते हुए देते हैं, ये मेरे बच्चे की खुशी का तुम रख लो। वो क्यों लेगा आपसे $5,000, ₹5,000 वो क्यों लेगा, वो तो आपको 20 दे सकता है। इसी तरह दुनिया का एक इंसान जिसको आप दें वो उसमें और डाल के देता है, तो क्या अल्लाह की साथ जो सारे खजानों का मालिक है क्या वो नहीं देगा? आप एक दे के देखें, अल्लाह ताला आपको 10 देगा। मा नकसत सदका तुम मिम मालिन, सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। लेकिन वही बात है कि वमन यूतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा, खैरे कसीर ऐसे कामों में इंसान लगाए कि जहाँ उसका सदका जारिया बढ़े, जहाँ उसका अजर उसकी नस्लों तक जाए। हमने ये आयतें जब अपने RKP क्लास में पढ़ी, तो उस वक्त जो स्टूडेंट, जाहिर है कि हम तो इतनी जल्दी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको बहुत स्लोली पढ़ा, तो उस वक्त उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट बनाया कि बताएं हम कहाँ लगाएं, हम क्या करें। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट हमारा बना था, दावा प्रोजेक्ट, दावा सीडीज, कि जो भी लेक्चर्स होते हैं फिर उसकी सीडीज उन्हीं पैसों की बनवा के आगे से आगे बढ़ाते हैं, और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इतनी खैर फैल चुकी है, हजारों की तादाद में सीडी जो बढ़ चुकी हैं। और बाज लोग जब बताते हैं हम वहां से आए, उसने सीडी दी, फिर वहां गए, मैं हैरान होती हूँ कि जिन्होंने इस बात का फैसला किया था, हमने कभी इसको सोचा भी नहीं था पहले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उसको वेबसाइट पे हमने लिंक भी डाला और उसके साथ यानी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो अपने हिसाब से चल रहा है, और हमें तो किसी को भी नहीं पता, हो सकता है आप में से भी कोई किसी की बात सुन के ही आया हो, किसी के कहने पर आया हो। तो हमेशा इंसान अपने लिए नेकी के ऐसे मौके ढूंढे जो उसके लिए बाकियात तो साले हाथ में हो, ताकि वो एवर लास्टिंग फसल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में गए, तो आपने देखा कि एक जगह एक फसल है, इतनी फसल है जब उसको लोग काट लेते हैं, अभी काट के रखते हैं कि फिर वो तैयार हो जाती है, तो पूछा अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, तो कहा ये मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते के अंदर मेहनतें करने वाले लोग हैं, इनका अजर है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे कि जिसका असर फिर हमारी नस्लों के अंदर भी जाए। फिर आगे फरमाया बमान फक तुम मिन नफकतिन, तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसको चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह ताला की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। लिल फुकरा इल्लज़ीन उख़सिरू फी सबीलिल्लाह, सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली से इनको मालदार ख्याल करते हैं, आप इनके चेहरे देख कर क्याफे से इन्हें पहचान लेंगे, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। अल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम बिललैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानिया, जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब के पास अजर है, और न इन्हें खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। ये थी आयत नंबर 270 से 274, इसका उनवान है खामोश तरीकेकार। इसके बाद स्लैश डालें, माल वाला माल लगाए, दीन वाला वक्त लगाए। इन आयात में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के एक वाक्य को बुनियाद बनाया। असहाबे सुफा नाम की एक जमात थी, ये वो सहाबे कराम थे जिन्होंने अपना आप दीन के लिए, इल्म के लिए डिवोट कर दिया था। दूर दूर से आते थे, मस्जिद नबी में ऊपर एक चबूतरा था सुफा नाम का, वहाँ ये रहते, 70-80 के करीब ये लोग थे। अब ये सारा दिन पढ़ते पढ़ाते, इनका काम ही इल्म सीखने का था, हद तक इतनी मोहब्बत थी इनको इल्म सीखने से कि नबी सल्लम को छोड़ के बाहर भी नहीं जाते थे। इसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा प्यारा वाक्य आता है, अगर आप कभी इसको पढ़ सकें तफसीर में तो पढ़िएगा, कि कैसे भूख की वजह से परेशान होकर निकले थे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कैसे खाना खिलवाया। अब होता क्या था कि ये लोग जो थे सारा दिन इल्म सीखने का काम करते थे। थे। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो तिजारत करते थे। दुनिया में काम करने के ये दोनों अंदाज हैं। कुछ लोगों को रूहानी काम करने पड़ेंगे, रूहानी खुराक तैयार करनी पड़ती है, कुछ को जिस्मानी खुराक करनी पड़ती है। अब कुछ लोग होते हैं वो माल में स्किल्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एक दफा इंसान तिजारत में जाता है तो उसका जहन तिजारत में लगने लगता है, वो बिजनेस माइंडेड बन जाता है। अब जो माल कमाता है वो यकीनन कुछ ना कुछ इल्मी मैदान में पीछे रहता है। अब उसके जहन में एक ये कॉन्शियसनेस होती है कि मैंने अपने वक्त को इल्म के लिए नहीं लगाया। इसके बरक्स दूसरा शख्स जो इल्म सीखने पे लगा लेता है अपना वक्त, उसका हाल क्या होता है कि बाज दफा उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। बाज लोग क्लासेस के लिए जॉब छोड़ते हैं, मर्दों की खासतौर पर बात है कि जिनके जिम्मे घर की किफालत है। तो यहाँ इन आयात में एक बड़ी खूबसूरत तरकीब बता दी कि माल वाला माल लगाए, वो ढूंढे ऐसे लोगों को जो अपने आप को दीन के लिए डिवोट कर चुके हैं, फिर अपना माल उन पे लगाए, और जिनके पास माल है वो माल लगाएंगे, और जिनके पास दीन है वो माल की तलब किए बगैर इखलास के साथ लोगों को अपना दीन देना शुरू कर दें। होता क्या है कि जब दीन वाला माल मांगने लगा कि मुझे माल दो, चंदे जमा किए जाते हैं कि खुदा के लिए हमें माल दो ताकि हम तुम्हें कुछ सिखाएं और तुम्हारे लिए कुछ काम करें, और दूसरी तरफ क्या होता है कि दौलत वाले जो है वो दीन वालों को गालियां ही देते फिरते हैं कि ये मौलवी तो मांगने में आएंगे। आज हमारी तरतीब उलट हो गई। अल्लाह के नबी का दौर बिल्कुल मुख्तलिफ दौर था। उस दौर में जिसके दीन होता था वो दीन सिखाता था, बाकी उसकी सारी जिम्मेदारियां दूसरे पूरी करते थे, और जिसके पास माल होता था वो माल कमाता था, और दीन वाले उसको जाके फारिग वक्त में दीन बताते थे। जैसे हजरत उमर कहते हैं कि अपने दोस्त के साथ टर्न्स लेते थे, एक दिन में वो आके अल्लाह के नबी की महफिल में बैठ के सीखते तो दूसरे दिन वो जाते, और इस तरह से आपस में सीखते। तो आज के दौर में अमूमन होता क्या है कि दीन वाले अमूमन माल वालों को बुरा कहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो दौलत रखते हैं, माल अल्लाह ने दिया है उनको, अल्लाह की नेमत है, वो इसलिए भी दीनी महफिलों में नहीं आते कि गिल्ट फील करते हैं। और आज हमारे यहाँ एक तसव्वुर दे दिया गया कि शायद माल वाला होना जहन्नमी होने की दलील है। वो भूल जाते हैं उस्मान गनी को, वो भूल जाते हैं अब्दुलरहमान बिन औफ को, कि जिनके पास इतने खजाने थे कि बाज दफा उनके ऊँटों की कतारें इतनी लंबी होती थी कि एक ऊँट मदीना में होता था और दूसरा जो था वो कई मील दूर तक चलता था। असल बात क्या है, जो इस वक्त का मसला क्या है वो क्या है कि हर बंदा अपनी आप को देखे, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, अल्लाह मैंने वो देना है। अगर मेरे पास माल है तो मैं तो माल दे के फिरूंगी कि मुझे अपना माल देना है, मेरे पास इल्म है तो मैं इल्म लेके फिरूंगी। हर बंदा अपने हिस्से से देने वाला बन जाएगा, दोनों काम होते जाएंगे, और जब वो दोनों एक दूसरे को बुरा कहते रहेंगे तो उसका नतीजा वही है कि एक मुल्ला और एक मिस्टर। आज दो टर्म्स हमारे इर्द गिर्द दिखती हैं कि मुल्ला साहब को गाली देते हैं मिस्टर, और मिस्टर साहब को कहते हैं वो बुरा, और गुजारा दोनों का नहीं एक के बगैर। जिसको निकाह कराना है उसको फिर मुल्ला की जरूरत पड़ेगी, कोई फौत हो जाएगा तो जनाजा मुल्ला को पढ़ाना है, और दीन वाले को जब कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी फिर उसने दौलत वालों के पास जाना है। बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर एक सोच दी गई है। आगे चलते हैं। अल्लज़ीन याकुलूना अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं इनके लिए इनके रब के पास अजर है, और न इन्हें खौफ होगा और न गम होगा। सूद खोर लोग खड़े न होंगे मगर इस तरह जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसको शैतान छू कर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूदी की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके लिए वो है जो गुजरा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी और ना गम होगा। ये थी आयत नंबर 275 से 277, 275 to 277। इसका उनवान है दूसरों का खून ना चूसो। इन आयात में उस मौजू पे बात की गई जो दीन इस्लाम में आमाल में ख़राब अमलों में से एक बहुत बड़ा अमल करार दिया जाता है, जिसको सूद कहा जाता है। अल्लाह ताला जो बंदों का बंदों से मामला चाहते हैं वो ज़कात और सदकात वाला मामला है, कि ज़रूरतमंद को ज़कात दी जाए और जो हैंड टू माउथ है उसको सदका दिया जाए। सूद का ताल्लुक दो इंसानों के बीच में होना ये गैर फितरी बांट है। इस्लाम चाहता है कि जिसकी ज़रूरत है उसको वो दे जिसके पास माल ज़्यादा है, खुद ढूंढ के देखे कि इसको देने की जरूरत है इसको दे दे। इसके बरक्स जो सूद का निज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि जिसको चाहिए वो पीछे फिर रहा होता है लेने वाले के, और जिसके पास माल है वो मजीद माल कमाने के शौक में उसको फिर भारी शर्तों पे सूद देता है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में भी राज किया गया था, और आज का तो पूरा मुआशरा ही सूद पे चलता है कि अल्लाह के नबी की वो हदीस सच साबित होती है कि एक वक्त आएगा कि कोई सूद से बचेगा लेकिन उसका गुबार जरूर उसको पहुंचेगा। ये सूद की हुरमत के बारे में इंतहाई आयतें हैं। इससे पहले दो तीन आयात गुजर चुकी थी, मैं भी वही तरतीब आपके सामने रखना चाहूंगी इंशाल्लाह ताला। जब हम सूरत रूम की वो आयत जिसमें आखिरी दफा इसका जिक्र आएगा तो वहां हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी हम आगे चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर्रिबा इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर कोई तंगी वाला हो और उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये थी आयत नंबर 278 से 281। इनका उनवान है सूद छोड़ दो अगर अल्लाह से डरते हो। सूद के पीछे अगर आप एक कुलिया समझ लेना कि कोई किसी पे ना जुल्म करे ना किसी पे जुल्म किया जाए। इस्लाम दौलत के बारे में जो नजरिया रखता है वो क्या है कि इसको फैलाया जाए, दौलत वाले के हाथ से गरीब के हाथ में आए और गरीब अपनी जरूरियात पूरी करे और इससे मुआशरे में एक अमन और चैन आए। जाहिर है कि सबको उसकी जरूरत की चीजें मिलेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप सोचे कि एक तरफ बहुत पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है वो गहरी खाइयां हैं। इवन करने का तरीका क्या है कि वो पहाड़ को ऊपर से काट के उस खाई को इवन कर दिया जाए। सूद के माल को भी गिल्ट यानी एक गिल्टी कह लें, ट्यूमर कह लें, रिबा का जो लफ्ज होता है ना, ये यानी असल माल के ऊपर दूसरे माल की तस्वर आते हैं, जैसे एक टीला होता है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जिनके इस माल है वो गरीबों को दें ताकि सब बराबर हो जाएं। इसके बरक्स सूद में क्या होता है कि जिसके पास माल है वो अपने उस माल पे और माल जमा करता जाता है। नतीजा क्या आता है कि दौलत जो है वो चंद हाथों में जमा होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के इस वक्त जो 200 अमीर तरीन लोग हैं यानी 200 सबसे अमीर वेल्दीस्ट पीपल जो है उनके हाथों में 41% इंसानों से ज्यादा दौलत है। यानी पूरी इंसानियत के 41% लोगों के पास जितनी दौलत है वो सिर्फ इन 200 लोगों के पास है। नतीजा क्या निकला? उधर से ट्रेंड्स निकलेंगे, उधर से कानून बनेंगे। आज सूद के निजाम की वजह से पूरी की पूरी कौमें गिरवी रखी गई हैं, पूरे पूरे मुल्क जो हैं वो महकूम और गुलाम बना दिए गए। इस्लाम चाहता है कि एक फलाही रियासत हो और हर एक उसका हक मिले और चंद लोगों के हाथों में सबके कानून ना हो। आज जो चंद लोगों के हाथों में सबकी किस्मतों के फैसले, उसकी वजह ये सूद का सिस्टम है। जब आप एक चीज एक गलत तरीके से ले लेते हैं तो फिर दूसरे तरीके से उसको मजबूरी बन जाते हैं, और आज आप देखिए कि वो चीज मजबूरी बन गई। पहले शौक होता है, बाद में वो मजबूरी बन जाता है, और नतीजा क्या होता है कि आज के दौर में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जे का शिकार है। यानी नस्लों की नस्लें जो है वो गिरवी रखी हुई है। इससे बचने का एक ही इलाज है कि इंसान अपने दिल में खुदा काफी पैदा करे, अपनी जरूरियात को लिमिटेड रखे। लोग कहते नहीं अल्लाह के नबी के दौर में वो नहीं था, ये नहीं था, ये सब ढकोसले। हजरत खालिद बिन वलीद और एक सहाबी जो थे उनकी एक पूरी फर्म थी उस दौर के हिसाब से कि जिसमें वो लोगों को तिजारती कर्जे देते थे। इसी तरह बनु सकीफ जो थे ये ताइफ वालों को सूद दिया करते थे। तो आज जो शक्लें बदल के इंटरेस्ट, और लफ्ज भी लफ्ज इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टिंग है, लफ्ज से ही उसकी हकीकत समझ आती है कि क्या खूब इंटरेस्टिंग बात है। और उसमें लोगों को इस तरह इन्वॉल्व कर दिया कि गैर तो गैर थे, अपने भी ना बच सके। कि वो लोग जिनके लिए अल्लाह ने आखिरत की जन्नतों के वादे किए हुए थे, उन्होंने दुनिया को जन्नत बनाने के लिए अपने सरों को कर्जों के बोझ में डाल दिया। और आगे देखेंगे, अब कर्ज की बात आ रही है। सूद और कर्ज का चोली दामन का साथ है, जहाँ सूद होगा वहाँ कर्ज होगा। और तकलीफ की बात तो यह है कि जब हम कर्ज ले लेते हैं सूद के ऊपर और फिर उसके बाद हम उसको अदा ना कर पाए तो कहते हैं अब हम पे ज़कात भी माफ है क्योंकि हम पे कर्ज है, अब हम हज भी ना करें क्योंकि हम पे कर्ज है, अब हम कुर्बानी ना करें क्योंकि हम पे कर्ज है। तकलीफ की बात यह है कि जब हम ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, कर्ज लेते हैं। मैं किसी जगह पे थी, खुतबा रो के ऐलानात हुए और उसके बीच में ये कहा गया कि हमारी मस्जिद पे कर्ज है, रमजान आ गया और दिस एंड दैट आपको करना है। और उसके बाद फिर क्या होता है, यानी जिस जगह पे कर्ज हो क्या वहां इफ्तारियां होनी चाहिए? बाहर जब मैं निकली तो इतने खूबसूरत कलर्ड फुल साइज पोस्टर्स में रमजान के स्केड्यूल बट रहे थे, छोटे छोटे दो तीन किस्म थे और हर आने जाने वाले को दिए जा रहे थे, इफ्तारियों के अनाउंसमेंट है। मेरा दिल चाहा मैं किसी को कहूँ कि रोक के सिर्फ एक सवाल मुझे पूछते हैं इमाम साहब से कि अगर इस मस्जिद पे कर्ज है तो ये कलर पोस्टर छिपाने की क्या जरूरत थी, क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चल सकते, क्या आप हाथ से लोगों को लिख के नहीं दे सकते, और जाने वाले किस रंग से वहां जाके इफ्तारियां करेंगे और कैसे खाएंगे। अगर एक दफा आपको पता चल जाए ना कि कर्ज कितनी बड़ी लानत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। एक मैंने किसी का वाक्य सुना, कहने लगे कि एक शख्स मुझे मिलने के लिए आया तो मिठाई का डिब्बा ले आया, जैसे लोग मोहब्बत में ले आते हैं किसी के पास, फिर कहा कि भाई मेरे लिए दुआ करें, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है। तो इन्होंने कहा कि तुम पे कर्ज है, फौरन कहते हैं कि मैंने मिठाई का डब्बा उसके हाथ में दिया। मैंने कहा जब तुम पे कर्ज है तुम ये मेरे पास मिठाई का डब्बा क्यों लाए, तुम बताओ तुम मेरे पास किस तरह आए। कहने लगा टैक्सी पे आया हूँ। मैंने कहा तुम टैक्सी पे क्यों आए हो, क्या तुम बस पे नहीं आ सकते थे, चले जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूर होता ना तुम किसी से मिलो ना जुलो ना किसी को तोहफा दो। कहते हैं उसके दिल में मेरी बात आ गई, चला गया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे मिला और कहने लगा मुझे उस दिन की आपकी बात ने इतना मुतासर किया कि वाकई मैंने जब अपने खर्चों को कट डाउन किया तो मेरा वो कर्ज जो था वो दूर हो गया। आज हमें इसका एहसास नहीं, आज हम अपनी नस्लों को क्या देके जाते हैं, कर्ज देके जाएंगे। आज विरसा बढ़ता है तो पहले तो कर्ज निकलना है, कर्ज में तो वो सारा कुछ निकल गया, नस्लों को विरसा कहाँ मिलेगा, वो तो कर्ज मिलेगा। और ये मुझे उस वक्त समझ आई जब मुझसे किसी ने एक मसला पूछा और जिसकी गहराई में बात निकली ये कि जब बाप फौत हुए तो माल भी बहुत था लेकिन कर्ज भी था, कर्ज देते तो माल उससे थोड़ा था, फिर माल लेने की तो बात ही नहीं पैदा होती। तो लिहाजा इस शऊर के साथ अब अगली आयतों को सुनते हैं। और बेसिकली ये एक रुख्सत थी। आप देखिए कि माल की बात चल रही थी, शुरू में सदका खैरात की बातें हुई, सदका खैरात अच्छी बात है, गरीबों को दिया जाए, उससे कोई बचना चाहता है, यानी सदका खैरात अगर जब रुक जाता है तो उसके नतीजे में सूद आम हो जाता है, अब कोई सदका लेना नहीं चाहता, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने का डर है। दूसरी तरफ सूरत आती है कि सूद सूद हराम है, वो ले नहीं सकते। तीसरी सूरत क्या, उसका जिक्र अब अगली आयत में, और वो है कर्ज कैसे है, उसकी कुछ कंडीशंस इसमें हम देखेंगे। और ये कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है अल्फाज के एतबार से, इसको आयत दैन भी कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबू। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला कर लो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे, जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया बस उसे भी लिख लेना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए, अपने अल्लाह से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से भी दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा लिखने में काहली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक को शुबे से भी ज्यादा बचाने वाली है। हाँ ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर इसके लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाए और ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डर जाओ जो तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। वइन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबा, और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा करे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। ये थी आयत नंबर 282 से 283, इनका उनवान है बाद की रंजिशों से बचने के लिए। बाद की रंजिशों से बचने के लिए पहले ही लिखत पढ़त कर लो। इन आयात में हमने कर्ज और मॉर्गेज दोनों की बातें पढ़ी, यानी रहन की बातें पढ़ी गई। ये एक अगली रुख्सत थी कि अल्लाह ताला ने बताया कि अगर कोई सूद से भी बचना चाहता है और सदका खैरात वो ले नहीं सकता तो फिर वो कर्ज ले ले। कर्ज अलाउड है इस्लाम में, इसकी क्या हैसियत है, कर्ज की इजाजत है, रुख्सत भी है, लेकिन लेने देने की कुछ शरायत है जिसका तस्करा हमने इस आयत में पढ़ लिया। लेकिन कर्ज पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मरने वाले की मैयत कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है यहाँ तक कि उसको अदा न कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लम के सामने जब कोई जनाजा लाया जाता तो आप पहले पूछते कि क्या इसके ऊपर कोई कर्ज था, अगर कहा जाता हाँ तो फिर आप उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाते, किसी और को कहते तुम पढ़ा लो, क्योंकि ये कॉनर होती है कि अल्लाह के नबी किसी का जनाजा पढ़ाए तो अल्लाह के नबी उसका नहीं पढ़ाते थे। इसी तरह एक रिवायत से पता चलता है कि शहादत से इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के, तो इसकी कबाहत को महसूस करना चाहिए। मजबूरी की बात और है, बाज दफा वाकई हैंड टू माउथ होने की कैफियत होती है, तो कर्ज का ताल्लुक जरूरियात से है, तईशात हाथ से नहीं। अगर इस जुमले को इसके उन्वान में लिख लें तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी थीम समझ आ जाएगी कि कर्ज जायज़ है मगर ज़रूरत के लिए, तईश के लिए नहीं। और अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे कि हम सिर्फ अपनी दुनिया की लग्जरीज़ के लिए अपने आप को कर्ज़ों का शिकार कर लें। आखिरी आयतें हैं सूरत बकरा की, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मलकियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए, ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से हम किसी में तफरीक नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अतात की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, जो नेकी कमाएगा वो उसके लिए है और जो बुराई करे वो इस पर है। रब्बना ला तुआखिसना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिक, वाफू अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या हमने खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा, और हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा, आमीन। बड़ी खूबसूरत दुआ के साथ सूरह तमाम होती है। असल में मक्की दौर से निकल कर अब मदनी दौर के आगाज थे और मुसलमानों को दुआएं सिखाई जा रही थी। जो कुछ 13 साल में अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, अब मदनी दौर में जाके इसकी हिफाजत करना। और ये आखिरी आयतें इतनी खूबसूरत हैं कि इनको अल्लाह ताला ने जमीन पे नाजिल नहीं किया बल्कि आसमानों पे अल्लाह के नबी को मेराज के सफर पे ये दुआएं दी गई। रात आखिरी अमल यही होना चाहिए कि इन दो आयतों को हम पढ़ सकें। और दुआ खास तौर पर बड़ी खूबसूरत है, इसमें इस हिस्से को अनवान लिख लीजिए, 284 से 286, जर्रे से सितारे तक इतात में बंधे हुए हैं, यानी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की बात मान रहा है और तुम क्या कर रहे हो। असल में इस आयत में फिर वही कायनात की निशानियों ने हमें तवज्जो दिला दी कि सूरज चांद सितारे जर्रे रेत के जर्रे पानी के कतरे हर चीज़ अल्लाह की बात मान रहे हैं। हम सब इन सब से अगर सीख लें तो इताअत सीख सकते हैं। अल्लाह ताला का जो बंदा मतलूब है वो इताअत और ईमान वाला है। ईमान क्या है कि बंदा अपने आप को रब के हवाले कर दे, और इताअत क्या है कि अमल से उसको साबित कर दे। जो इंसान इस शऊर के साथ अपने रब को पा लेता है फिर उसकी ज़ुबान पे दुआएं आती हैं कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे वैसा बना ले जैसा तू बनाना चाहता है। हम भी यही दुआ करते हैं।